शांति। हमारे समक्ष आदरणीय विश्व कल्याणकारी रहमदिल, सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर वरदानों की वर्षा करने वाली ऐसे डॉक्टर सविता बहन उपस्थित है, आपका स्वागत है। बाबा के कार्य के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टडीज़ की, उसके प्रैक्टिस की। 1974 में ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए और बाबा के डबल डॉक्टर बन गए। तत्पश्चात पांडव भवन में बाबा के डिस्पेंसरी में सेवाएं दी, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सेवाएं दी। आबू रोड में दादी प्रकाशमणि जी के साथ रह करके उनको स्वास्थ्य लाभ दिया तथा आबू रोड में शांति वन में मानसरोवर में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पर राजयोग शिविर का आयोजन होता है और भी प्रोग्राम्स होते हैं, बाबा मिलन होता है। इस दरमियान अपनी सेवाएं दी वर्तमान समय मेडिकल विंग की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अपनी सेवाएं दी है। आप वुमेन्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं तथा महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना है, सुरक्षित रखना है, सशक्त बनाने के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई बचाना कैसे है, उनके जो अभियान चलते हैं उनका पूरा मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे हमारी दीदी को हम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में चैनल्स में देखते हैं, कैसे सुचारू रूप से अपनी सरलता से सभी को गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, तथा पत्रिका है, बुक्स है, ये सारे कार्य पब्लिसिटी के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है। तो आपको मैं फिर से वेलकम करती हूँ और जमा का खाता कैसे बढ़ाए इस टॉपिक के ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आप सभी पांडव भवन में भर्ती करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये भी बाबा ने हमें लॉटरी दी है। लॉटरी माना क्या? अचानक जब बहुत कमाई हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? लॉटरी। तो यहां से तो कितनी कमाई करके जाएंगे, कितना जमा करके जाएंगे। कौन पहली बार आए हैं पांडव भवन भट्टी में? अच्छा, तो उनके लिए तो ये स्पेशल अनुभव है, क्योंकि पांडव भवन में रहना, क्योंकि मम्मा बाबा की ये कर्म भूमि रही, तपस्या भूमि रही, हमारी दादियों की भी ये तपस्या भूमि रही। तो यहाँ जो हमें अनुभव होता है कि हमें योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप ही योग लगता है, मेहनत लगती है योग करने में, तो कैसे बाबा की यादों में समा गए, वो सहज अनुभव होता है। तो संगम युग को बाबा कहता ही है जमा करने का युग, क्योंकि संगम युग पर हम पूरे कल्प की प्रारब्ध जमा करते हैं। केवल सतयुग त्रेता 21 जन्मों की बात नहीं, लेकिन चाहे हम पूज्य बनते हैं, चाहे हम पुजारी बनते हैं, जो हमारा भाग्य बनता है पूरे कल्प का, ये संगम युग पर ही बनता है। और इसीलिए इसको धर्माओ युग भी कहते हैं, या चढ़ती कला का युग भी कहते हैं। और अविनाशी बैंक बाबा कहता है इसी समय खुलती है, और किसी युग में ये बैंक नहीं खुलती, और किसी युग में हम ऐसे जमा नहीं कर सकते। कैसे जमा करते हैं? एक का पदम गुना होता है। उस बैंक की इंटरेस्ट कितनी होती है? बहुत थोड़ी, कुछ परसेंटेज में होती है, लेकिन बाबा के बैंक की जो इंटरेस्ट है एक के पदम गुना है। तो बाबा कहता है इतनी कमाई आप बच्चे करते हो संगम पर कि दुनिया में कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो वो भी ऐसी कमाई नहीं कर सकता। बॉम्बे तो वैसे भी बिजनेस की सिटी है ना, बाबा उसको नरदेसावर बोलते हैं, है ना। तो चलो वो बिजनेसमैन एक दिन में करोड़ों कमा लेगा, इससे ज्यादा कमाएगा क्या, है ना। टाटा है, अंबानी है, जो भी है, मतलब हम जिनके मुख्य मुख्य घरानों के नाम लेते हैं, लेकिन वो एक कदम उठाए और पदम कमा ले, ऐसी कमाई कोई कर सकता है? हम कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि यदि आप बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म करते हो, कर्म योगी बनकर कर्म करते हो, बाबा की याद में कर्म करते हो, तो उस कर्म के कदम में पदम है। इतनी कमाई हम कर रहे हैं कि एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में हम पदमों की कमाई कर सकते हैं, इतनी बाबा ने हमें लिफ्ट दे रखी है। वो फिर हमारे ऊपर है कि हम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। तो जितना हम जमा करना चाहें, बाबा ने हमें हमारे ऊपर वो अधिकार दे रखा है, जितना हम उसे बढ़ाना चाहें वो हमारे हाथ में है। तो कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बाबा ने जो भी खजाने हमें दिए हैं वही हमारा धन है। तो कौन से खजाने दिए हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, श्वास और संकल्प, ये 6 मुख्य खजाने हैं। तो बाबा कहता है जितना इनको यूज करोगे, जितना सफल करोगे, उतना आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा। दुनिया में तो है धन, धन को बचा बचा कर रखते हैं, ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा, खत्म होगा। तो जितना अंदर रखेंगे उतना, या बैंक में रखेंगे उतना वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के जो धन है, जो बाबा ने हमें खजाने और धन दिए हैं, उसके साथ उल्टा है कि जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। तो जिसको कहा धन दिए धन्ना खुटे। तो जैसे समय की बात, वर्तमान समय जो संगम युग का समय है, तो बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। जैसे कहा एक सेकंड में हम कदम उठाते हैं और पद्मों की कमाई कर सकते हैं, तो ये टाइम वैल्यूबल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें कितना समय मिला है, कितना समय मिला है, 90 साल हो गए संगम युग को और हमको ज्ञान में आए 10 साल हुए, 20 साल हुए, कितने साल हुए, मानो 50 साल भी हुए, लेकिन फिर भी पूरा समय तो नहीं मिला ना हमें। तो जितना भी समय हमें मिला है वो समय पूरा का पूरा हमारा सफल हो, हम समर्थ तरह से उस समय को यूज करें। वो समय हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वेस्ट कैसे जाता है, वेस्ट कैसे जाता है? आज बाबा ने मुरली में कहा कि हम एक दो की पर चिंतन में समय गवा देते हैं कई बार, या व्यर्थ की बातों में, या फिर आजकल जो टीवी है, मीडिया है, समाचार सोचते हैं, हम तो समाचार ही सुन रहे हैं। अब समाचार सुनते हुए एक घंटा समाचार सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक घंटा समाचार सुनने की जरूरत है? चलो हमें संसार समाचार होना चाहिए, ये नहीं कि संसार समाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन कितना सुनना है, तो उतना ही जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमारे लिए जानना जरूरी है। हमको बहुत टू मच किसी भी बात के विस्तार में, इस सांसारिक बातों के विस्तार में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर अगर एक बार गए सोशल मीडिया में, अब वो लोगों को तो पैसा कमाना है ना, तो वो ऐसे इंटरेस्टिंग वे में उन चीजों को आपके सामने लाते हैं कि आपसे वो छूटता ही नहीं है, और फिर कितने घंटे चले गए पता नहीं, तो कहाँ गया टाइम? तो हमारा टाइम वैल्यूबल है ना? तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है, और उसके लिए हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए जो बाबा हमेशा बार बार हमें ध्यान दिलाते हैं कि अगर हमें फुल स्टॉप लगाना है तो कितने समय में हमारा फुल स्टॉप लग जाए, एक सेकेंड। तो समय सफल हो हमारा, ये जो इतना वैल्यूबल समय जिसके लिए बाबा कहता है अब नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी करना है, क्योंकि हमारे भी समय का भरोसा नहीं। हमें पता है कि पूरा संगम युग रहने वाले हैं, किसको पता है पूरा संगम युग रहने वाले हैं? तो आजकल तो अचानक और एवर रेडी का टाइम है, कब किसका नंबर लग जाए पता नहीं, तो मेरे पास कितना समय है वो भी मुझे पता नहीं। तो जितना अभी है, जो करना है अभी करना है, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जितना समय को सफल करते जाएंगे उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। फिर श्वासोश्वास हमें बाबा को याद करना है, श्वास सफल का, श्वास का खजाना है ना। तो भक्ति में भी जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान को श्वासोश्वास याद करते हैं, जिसको वो अजपा जाप बोलते हैं, मानो गुरु ने मंत्र दे दिया तो जपते रहेंगे, उसको जपते रहेंगे, अपने आप वो मंत्र चलता रहे, उनकी वो कोशिश होती है। और यहाँ बाबा हमें कहते हैं निरंतर योगी बनो। माना बाबा और मैं कंबाइंड हैं, बाबा और मैं अलग हैं ही नहीं, सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। तो सर्व संबंधों से बाबा को याद करते रहो। अच्छा निरंतर योगी नहीं तो कम से कम 8 घंटा याद करो। 8 घंटा बाबा हमें कहते हैं, है ना, मतलब 8 घंटा आप नींद करो, 8 घंटा आप अपने शरीर निर्वाह के लिए करो, इतनी भी छुट्टी बाबा हमें देता है। और कोई साकार मुरली ऐसी नहीं होती जब बाबा ने हमें ना कहा हो कि याद का चार्ट रखो। हर मुरली में याद की इम्पोर्टेंस बाबा हमें बताते हैं। तो कौन है जो समझते हैं हमारा 8 घंटे का चार्ट तो रहता है। पहली बात तो कौन चार्ट रखते हैं याद का, क्योंकि बाबा कहते रहते हैं याद का चार्ट रखो। हाँ हाँ, हाथ उठाइए। अच्छा बहुत कम। अच्छा जो अच्छा चार्ट नहीं रखते हैं पर चार्ट देते हैं बाबा को, सोने से पहले हम अपना चार्ट देते ना, वो ज्यादा है। फिर जो समझते हैं हमारा 8 घंटे योग का चार्ट रहता है, सब मिला के कर्म योग मुरली अमृत वेला, हाँ वो सब बाबा की याद में ही आता है। तो 8 घंटा, हाँ हाँ फिर से उठाओ हाथ। अच्छा थोड़े हैं 8 घंटा चार्ट वाले। और जो समझते हैं 8 घंटा नहीं रहता लेकिन 4 घंटा रहता है, अच्छा वो ज्यादा है। फिर जो समझते हैं 2 घंटा, हमारी टीचर्स मैंने 2 घंटे में भी नहीं और 1 घंटा, हाँ 1 घंटा तो अमृत वेला ही हो जाता है, है ना। तो 1 घंटा तो मिनिमम सबका। फिर कई बार बाबा ये भी उलाना देते हैं कि बच्चे याद ही नहीं करते हैं, महारथी बच्चों का भी जो योग का चार्ट जो होता है वो नहीं नहीं के बराबर है। तो याद में कमाई है, याद में हम बिंदु लगाते हैं। अभी हम गीत सुन रहे थे ना, ये 3 बिंदु मत बिसरो। तो आत्मा बिंदी लगाई तो हमारी कमाई में 1 बिंदी लग गई, शिव बाबा की बिंदी लगाई तो कमाई में 2 बिंदी लग गई, ड्रामा की बिंदी लगाई तो 3 बिंदी। तो बिंदी लगती जाएगी तो कमाई की संख्या कितनी बढ़ेगी। तो याद में कमाई है, ये भी बाबा कहते हैं, जितना हम याद करेंगे उतना हमारी कमाई बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी। तो हमारे ज्ञान में भी कमाई है और हमारे योग में भी कमाई है। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार ये अटेंशन दिलाते हैं। और तो योग के फायदे हैं ही कि हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं, हमारा जो आत्मा है वो पावन भी बनती है। फिर हमारा जो तीसरा खजाना है, संकल्प का खजाना। तो हमारे जितने संकल्प समर्थ होंगे, जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे, जितना शुभ भावना शुभ कामना वाले संकल्प होंगे, जितना कल्याण के संकल्प होंगे, उतना हमारा जमा होता है। फिर परिस्थितियों के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। माना ये एक रस स्थिति की बात बाबा करता है ना, तो अगर उतार चढ़ाव आते हैं ना, वैसे तो हम सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभ भावना ही रहती है हमारी, लेकिन ये ऐसा करता है ना, तो जब ये ऐसा करता है यानी कोई भी हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है या कोई भी हमारा आपस का स्वभाव संस्कार का टकराव हो गया या कोई भी ऐसा पेपर आ गया हमारे सामने, और फिर हम क्यों क्या में चले जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, व्यर्थ तो क्या नेगेटिव में भी चले जाते हैं। नेगेटिव माना विकारों के वश होकर के जो संकल्प हमारे चलते हैं वो हमारे जमा के खाते को बहुत कम करते हैं। तो नॉर्मली ब्राह्मण अब इतने नेगेटिव में नहीं जाते, लेकिन फिर भी कभी कभी परिस्थितियों के प्रभाव में नेगेटिव हो जाते हैं। पर अगर ऐसे पेपर के समय पर भी अगर हमारी मनसा श्रेष्ठ रहती है, कल्याण की रहती है, शुभ भावना की रहती है, तो हमारा जमा हो जाता है। तो वो सारा हमारा चार्ट बाबा के पास रहता है, बाबा की ऑटोमेटिक मशीनरी है, बाबा को काउंट नहीं करना पड़ता ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। और ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना तो है ही हमारा, ज्ञान को बोला ही है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान धन, ज्ञान को धन भी कहा है बाबा ने। तो केवल स्थूल धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान भी धन है, क्योंकि ज्ञान धन को लाता है। दुनिया में भी देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन में जाते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, तो जितना ज्ञान होता है उतना कमाई ज्यादा होती है। तो यहाँ भी पढ़ाई कमाई है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ भी हम बाबा की पढ़ाई पर जितना अटेंशन रखते हैं, जितना हम रेगुलर पढ़ते हैं, और ना सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन सुनने के साथ साथ समाना है, उसका स्वरूप बनना है। एक होता है सुनकर हम खुश होते हैं क्योंकि बाबा का ज्ञान हमें खुशी देता है, बाबा हमें इतने सुमान देते हैं, इतनी नशे की खुशी की बातें सुनाते हैं तो हम सुनकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन सिर्फ खुश होने तक नहीं, यानी फिर खुश हुए और फिर दरवाजे पर ही छोड़कर चले गए और बाहर जाकर वैसे के वैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ज्ञान से हमारी कमाई हो रही है वो नहीं, जमा नहीं होगा हमारा। लेकिन जो बाबा ने कहा वो थ्योरी जो हमने पढ़ी वही हमारा प्रैक्टिकल हो। दुनिया में भी होता है ना, थ्योरी पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। साइंस में हमेशा ऐसा होता है कि साइंस के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करके भी देखना है कि जो हमने पढ़ा है वो रियल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो ऐसे ही है कि नहीं है। तो ऐसे ही जो बाबा हमें बता रहे हैं, जो ज्ञान सुना रहे हैं, अब आत्मा का ज्ञान मैं यूज करूं टाइम पे तो वो काम करता है नहीं करता, वो मुझे विजयी बनाता है कि नहीं बनाता है, तो उसको मुझे प्रैक्टिकल यूज करना है, तभी हम माया जीत बनेंगे, तभी हम विजयी बनेंगे, तभी हम विघ्न जीत बनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो जितना हम इन अस्त्र शस्त्रों का समय पर प्रयोग करते हैं, जैसे वो लड़ाई में भी अस्त्र शस्त्र यूज करेंगे तभी वो दुश्मन को जीत पाएंगे। तो यहाँ हमारा दुश्मन कौन है? कौन है? आप काम विकार आया है तो उसको जीतने की विधि बाबा ने बताई, क्रोध को जीतने की विधि बाबा ने बताई है, लोभ को जीतने की विधि बाबा ने बताई है। तो वो ज्ञान की पॉइंट टाइम पर याद आ जाए, माना टाइम पर वो निशाने पर लगे तब हम जीत पाएंगे, नहीं तो बाद में याद आएगा अरे उस समय ऐसा नहीं कहते, उस समय ऐसा नहीं करते, तो फिर समय तो निकल गया ना, तो हम विजयी तो फिर नहीं कहलाएंगे। तो हमारा फिर जमा, जब विजयी बनेंगे तभी जमा होगा। अब पढ़ाई का पेपर तो होता ही है, दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसका पेपर ना हो पॉसिबल तभी वो क्लास आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो हायर एग्जाम पास करना पड़ता है तब जाकर के वो होगा। तो यहाँ भी जो हमें ऊंच पद प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो हमारा नंबर वन आने का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है हमारा? पास विद ऑनर होना है। क्या बनना है? क्या बनना है? राम सीता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो फिर अगर ये बनने का हमारा लक्ष्य है तो फिर हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? रेगुलर पंचुअल स्टडीज में, जो एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ, जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं उनकी उनकी स्टडीज कैसी होती हैं, तो वो हमने दादियों को देखा। दादी प्रकाशमणि जी के बारे में, अब तो अगस्त मास ही चल रहा है, दादी का मास है, तो हम दादी की विशेषताएं सुन भी रहे हैं और आपस में हम एक दो को शेयर भी करते हैं खास, तो दादी की ये विशेषता बहुत सुनाते हैं कि दादी कितनी बार मुरली पढ़ती थी, कितनी बार पढ़ती थी, किसको मालूम है दादी कितनी बार मुरली पढ़ती थी जी? चार बार, दादी चार बार हर दिन मुरली पढ़ती थी। शुरू शुरू में मैं जब दादी के पास सेवा में आई तो मैं सिर्फ रात को दादी के पास सेवा में आती थी। रात को कोई भी उनका जो भी मेडिकल हेल्प चाहिए होता था, दादी कमरे में आते थे तो मैंने देखा कि दादी मुरली पढ़ते थे, बेड पर मुरली पढ़ते थे और मुरली पढ़ करके ही फिर सारा उनका जो भी करना है करके फिर दादी सोते थे। तो रेगुलर हमने देखा कि कितना भी लेट हो जाए, किसी भी प्रोग्राम से दादी आ रही है, बाबा का प्रोग्राम ही कई बार 12-12 बजे तक चलता था पुराने टाइम में, तो दादी भले बाबा के प्रोग्राम से 12 बजे फिर उसके बाद खाना खाया कमरे में पहुंचते 12:30-1 हो गया, लेकिन दादी पूरी मुरली पढ़ेगी फिर सोएगी। तो कहते भी थे दादी अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह तो आपको दादी तो क्लास में भी सुनाती थी मुरली, तो आपको तो क्लास में भी सुनाना है, तो दादी आप अभी रेस्ट कर लो। दादी कहती तुमको नींद आ रही है तुम सो जाओ, मैं मुरली पढ़ के ही सोऊंगी, फिर चाहे रात के 2 क्यों ना बजे दादी मुरली पढ़ के ही सोएगी, पक्का नियम था दादी का। और मुरली पढ़ने के बाद दादी को सोने में टाइम नहीं लगता था, मुरली पढ़ने के बाद 5 मिनट के अंदर दादी सो जाते थे। इतना हल्का, मतलब हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संस्था को संभालने वाले के सामने कितनी बातें आती हैं और सबकी बातें आती हैं, लेकिन कोई चिंतन नहीं होता था दादी का और दादी सहज सो जाते थे। और कभी कोई पूछते भी थे ना दादी को कि दादी आपको हेडेक नहीं होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, माना कोई कंसर्न नहीं होता है, तो दादी हमेशा यही कहती थी कि पहली बात तो मैं अपने को हेड समझती नहीं हूँ, क्योंकि हेड कौन है, बाबा है, करण करावन हार तो बाबा है, और मैं करती हूँ ऐसा भी मैं, दादी तो मैं शब्द तो दादी यूज ही नहीं करते थे। तो ये दादी की विशेषता तब मैंने देखी जब मैं रात को जाती थी, लेकिन जब मैं फुल टाइम दादी के साथ रहने लगी तो मैंने देखा सिर्फ रात को नहीं पढ़ती दादी मुरली, सवेरे अमृत वेले के बाद भी पढ़ती, क्योंकि क्लास में भी सुनाते थे, फिर क्लास में सुनाते वो 3 बार, फिर दिन में रेस्ट करके, दिन में दादी 1 घंटा रेस्ट करते थे, 1-1.5 घंटा रेस्ट करते थे, तो रेस्ट के बाद जब दादी उठती थी तो भी दादी मुरली पढ़ती थी, माना दादी की पढ़ाई ही मुरली। तो मेरे को ऐसे एक बार संकल्प चला कि क्यों इतना पढ़ते हैं, ओम मंडली के टाइम से मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने तो यही मुरलियां चलाई हैं, तो रिवाइज हो रही हैं मुरलियां, तो इतनी बार तो सुनी हुई है दादी की मुरली, दादी को तो एक एक माना सब कुछ ही याद है, इतने सालों से सुन रहे हैं और सुनाते भी हैं, केवल सुन ही नहीं रहे लेकिन सुनाते भी हैं, तो क्यों दादी को 4-4 बार मुरली पढ़ना है। मतलब ऐसे मुझे थॉट चला, हमारी अपनी बुद्धि से हम सोचते हैं ना कोई भी बात को, पर मैंने देखा कि दादी जो 4 बार मुरली पढ़ती थी, दादी को पूरी मुरली याद होती थी, और होगी भी, अगर कोई 4 बार मुरली पढ़ेगा तो उसे याद होगा या नहीं होगा, एक बार में हम कितनी पॉइंट बोल सकते हैं। आज आपने सुबह मुरली सुनी और मैं पूछती हूँ बाबा ने क्या कहा, तो कितना सुना देंगे, कई कहेंगे बहुत अच्छी थी मुरली लेकिन याद ही नहीं आ रहा बाबा ने क्या कहा। क्यों नहीं याद आ रहा है, क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया, मन में उसको फिर से चिंतन नहीं किया। अच्छा, अब आप में से कुछ एक पॉइंट तो मैंने बता दिया, आप में से कुछ कौन बता सकता है आज की मुरली का पॉइंट, ईमानदार होना है, होकर चलना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है जी, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है, निंदा नहीं करनी है। आज का जो मेन पॉइंट था वो यही था, ईर्ष्या नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, अवगुण नहीं देखना है, हाँ, और ईमानदार होकर बाबा से चलना है मेन। तो जैसे मुख्य मुख्य पॉइंट हमने बता दिए है ना, अगर हम 2 बार मुरली पढ़ेंगे तो और भी हम बता सकते हैं, और तीन बार पढ़ेंगे तो तीन चौथाई मुरली हमें याद होगी और चार बार पढ़ेंगे तो पूरी मुरली याद होगी। तो फिर मैं देखती थी कि दादी उसे यूज करती थी, दादी को मुरली याद होती थी तो दादी तो सारा दिन मिलती थी, भाई बहनों से मिलती थी, आने वाले मेहमानों से मिलती थी और ग्रुप से मिलती थी, जो भी प्रोग्राम होते थे वो प्रोग्राम के लोगों से जाकर के मिलना, क्लास कराना। तो जो पॉइंट जिसके काम की है दादी उसे सुनाती थी, और क्योंकि वो बाबा की कही हुई बात है तो वो दिल से लगती थी कि दादी जो भी बोलती थी। तो ये मैंने देखा कि दादी के उसमें ये फर्क आता था, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो वो स्मृति स्वरूप की स्थिति दादी की रहती थी, बनानी नहीं पड़ती थी, नेचुरल। अब जैसे बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, जैसे गाय जुगाली करती है तब जाकर के वो उसका अपना शरीर का हिस्सा मांस रक्त बनेगा, या हम भी जो खाना खाएंगे जब तक वो पचेगा नहीं तब तक हमारा नहीं बनेगा वो, तो वो हम नहीं कर सकते। कई कहते हैं मनन नहीं चलता है हमारा, है ना, इतना दिमाग नहीं चलता है, पर रिवाइज तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो रिवाइज तो करना आसान है ना, और आज तो हमारे हाथ में मुरली है जब चाहे। तो एक तो मुरली रेगुलर सुनना है ना, कई बाबा के थर्सडे संडे वाले स्टूडेंट भी होते हैं, तो थर्सडे संडे वाले नहीं, रोज जो रेगुलर मुरली सुनते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, मेजॉरिटी सुनते हैं। अब मैं कहूंगी जो नहीं सुनते वो तो नहीं उठाएंगे क्योंकि हाँ, पर दूसरी बात सेंटर पे आकर के जो रोज सुनते हैं वो हाथ उठाएं। हाँ, वो कम हो गए, है ना। तो चलो कोई कारण बनता है, अगर हम सुबह नहीं आ सकते तो शाम को आए, क्योंकि सेंटर पर आकर मुरली सुनना और घर में मुरली सुनने में फर्क है। आप घर में मुरली सुनते हैं तो निश्चित है आप दूसरी बातों पे भी ध्यान देते हैं, किसी ने आके आपसे बात कर ली, किसी का फोन आ गया आपने फोन पे भी बात कर ली, किसी ने दरवाजे पे बेल बजाई आपने दरवाजा भी जाके खोल दिया, दो मिनट वो भी बात कर ली, या कोई आपसे काम के लिए कोई बात करने आ गया तो आपने, तो कितना आपकी मुरली में सुई। तो हमने सिर्फ नेमी नाथ बन करके कि बाबा का नियम है रोज मुरली सुनना है इसलिए हमने सुन ली, लेकिन वो अंदर जाएगी। तो इसीलिए सेंटर पर आकर मुरली सुनना, क्योंकि हम सब बातों से फ्री हो जाते हैं। सेंटर पर आकर हम बैठे हैं, पूरा सिर्फ हम मुरली सुन रहे हैं, पूरा ध्यान हमारा मुरली में होता है, तो हमें वो धारणा होती है, तब वो हमारे जीवन में उतरता है। तो वो बाबा ने हमें कहा कि ज्ञान जितना स्वरूप में है उतना हमारी कमाई बढ़ती जाती है, क्योंकि वो फिर हमारा गुण और व्यवहार हो जाता है। तो बोलना एक अलग बात है, ज्ञान दान करना वो भी कमाई है, जैसे कहा ना कि अपने लिए भी यूज करें और दूसरों को भी हमें देना है, बांटना है। और ज्ञान धन तो ऐसा है कि जितना हम देंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बाबा का संदेश देना है, ज्ञान सबको देना है वो तो है, लेकिन कैसे देना है? तो जिसको बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से, माना केवल आपके शब्द नहीं बोले लेकिन आपका वो स्वरूप बोले कि हाँ वो ज्ञान आपके जीवन में। अब आप परिवारों में रहते हैं, परिवारों में आप ज्ञान सुनाएंगे कोई नहीं सुनने वाला, है ना, उनको पता है, वो कहेंगे नहीं नहीं बहुत बहुत अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो शुरू से आपको देखते आ रहे हैं। लेकिन ज्ञान से आपके जीवन में परिवर्तन अगर आया है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, भले कई बार अहम के कारण नहीं बोलेंगे लेकिन मन ही मन वो समझते हैं कि इनके ज्ञान में ताकत तो है, ये जो पहले थे वो अभी नहीं है, इनका गुस्सा कम हो गया है, या जो भी हमारा स्वभाव था पहले, हम बहुत चिढ़ते थे या हम बहुत अशांत हो जाते थे या हम टेंशन में आ जाते थे, लेकिन अब हम बहुत बहुत पहले से हमारा स्वभाव बदल गया, तो वो नोट करते हैं। इसीलिए कहा एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपके कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है, माना 10 गुना ज्यादा जमा करते हैं जब हम अपने जीवन से सेवा करते हैं, हम अपने गुणों से सेवा करते हैं। इसलिए गुणदान को बाबा वरदान कहता है और ज्ञान दान को महादान कहता है। जो ज्ञान का दान करते हैं वो महादानी है, लेकिन जो गुणों का दान करते हैं, अपने गुणों से सेवा करते हैं, अपने जीवन के स्वरूप से सेवा करते हैं, वो बाबा के वरदानी बच्चे हैं। तो ज्ञान हमारा समय पर काम करे, हमें विजयी बनाए। अब जैसे मानो काम विकार की बात की, अब आज की आप तो माया नगरी में ही रहते हैं, बॉम्बे में रहने वाले लोग है ना, तो अपने शरीर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही दुनिया में सब लगे रहते हैं आजकल, कि कैसे मैं अच्छा दिखूं। तो वैसे बाल बनाएंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, या वैसा ही सब उनका हाव भाव चाल चलन। देह अभिमान की दुनिया है ना, तो उनको वही करना है, उनके लिए तो वही प्रोग्रेस है लाइफ में। लेकिन अब हमारी दृष्टि वृत्ति जानी चाहिए, वो कैसे भी कपड़े पहने, कैसे भी बाल बनाएं, कैसे भी चलें, कैसे भी बोलें, हमारी दृष्टि किस पे जानी चाहिए? किस पे जानी चाहिए? आत्मा पर। तो अगर हमने आत्मा को देखा तो किसी के भी जो भी वो दैहिक स्वरूप है उनका, हमारा उस पर ध्यान जाएगा नहीं, हम देखते हुए भी उसको देखेंगे नहीं, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा नहीं। तो ज्ञान काम करता है। पर अगर हम भी देह अभिमान में हैं, भूले हुए हैं अपने आत्मिक स्वरूप को, हम भूले हुए हैं दूसरे की भी आत्मिक स्वरूप को भूले हुए हैं, तो फिर कहां ना कहां वो माया अपने प्रभाव में ले लेगी। तो वो ज्ञान समय पर काम करे। अब हम तो रहते ही उस दुनिया में है ना, जाना ही पड़ेगा, उन लोगों के साथ व्यवहार में आना ही पड़ेगा, कर्म उन्हीं लोगों के साथ ही करना है, कोई थोड़ी आप दुनिया से अलग रहते हो, उसी दुनिया में ही हम रह रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी शक्तियां हैं, बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अधिकारी हो, तो समय पर शक्तियां इमर्ज होनी चाहिए। अगर समय पर शक्ति इमर्ज हो गई और हमें विजयी बना देती है तो हमारा जमा हो गया। ऐसे नहीं कि मैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन अभी चाहिए थी सहन शक्ति और आ गई सामना करने की शक्ति। सहन शक्ति माना सहन शक्ति ही काम करे। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा जिस शक्ति की जरूरत है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा आपसी व्यवहार में। अब सबके संस्कार भिन्न भिन्न है, सबके विचार भिन्न भिन्न है, मिलते ही नहीं, लेकिन रहना तो साथ में है, काम साथ में करना है, सेवा साथ में करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एक दो के व्यवहार को सहन भी करना है, समाना भी, माना एडजस्ट भी करना है और सहन भी करना है। तो जहां चुप रह जाना है वहां चुप रह जाए, और जहां पर बात किसी की भी मेरे मुख से ना निकले, जिसको गंभीरता का गुण कहते हैं ना, कई होते हैं बहुत सहन करते हैं लेकिन फिर वर्णन भी उतना ही करते हैं है ना, इसने बोला इतना, हम चुप रहे, आपको पता नहीं हम कितना सहन करते हैं है ना। तो जो उनके अपने होते हैं ना, उनको सुनाते हैं जाकर के, मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं। अब क्या किया, बाबा कहते हैं सहन भी किया, कमाल की, लेकिन जब 4 लोगों को सुना दिया तो उसको धमाल में बदल दिया, तो जो जमा किया था वो माइनस हो गया। जमा किया, सहन किया, जमा किया, और इधर उधर वर्णन करके क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो सब गुण शक्तियां जो है वो एक साथ काम करना चाहिए। फिर कोई शक्ति हमें परखना, परखना माना माया के रॉयल रूपों को परखना मुश्किल होता है। मोटे रूप में तो हमें पता है, लेकिन रॉयल रूप में माया आती है, चांस लेती, क्योंकि माया को भी पता है इस रूप में मैं जाऊंगी तो ये इनको नॉलेज है, ये विजयी हो जाएंगे। लेकिन नए रूप में जाना है। अब नए रूप में जैसे वो सीता के लिए बताते ना, महल छोड़कर आ गई है ना, इतना सब कुछ छोड़कर आ गई, लेकिन बुद्धि कहाँ गई? सोने के हिरण में चली गई। अब वो छोटी सी बात उसको कहाँ खींच के ले गई? रावण के चंगुल में चली गई। केवल इतना सा लोभ, सब कुछ छूट गया लेकिन थोड़ा सा वो लोभ कहाँ ले गया? तो ऐसे ही माया फंसाती है, है ना। और सब कुछ छोड़ दिया हमने लेकिन थोड़ा कहीं लगाव झुकाव प्रभाव अभी भी आ जाता है, उसका असर आ जाता है, सेक आ जाता है उसका मानो। तो ये भी माया के सूक्ष्म रूप को परखना है। इसलिए बाबा कहते हैं अंश कब वंश बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो हमारी कमाई को खत्म कर देता है। और ऐसे ही किसी व्यक्ति को जब हम ज्ञान देते हैं तो भी उसको परखना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति की चाहत क्या है। जिसको बाबा कहते हैं नब्ज देखो, उसको शांति चाहिए तो पहले उसको शांति मिलनी चाहिए, बाद में उसको साइकिल की बात बताओ या सतयुग की बात बताओ ना। उसको सतयुग में मजा नहीं आएगा जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। अगर उसको खुशी चाहिए, उदास होके आया है, उसको खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आप उसको ऐसी बातें सुनाओ जो उसके अंदर वो खुशी और शक्ति आए। बाद में ज्ञान सुनाओगे तो वो सुनेगा। जैसे जिसको पानी चाहिए, प्यास लगी है, पानी नहीं देंगे तो कितने भी भोजन दे दो, पहले क्या चाहिए? पानी पिलाओ। तो ऐसे ही उस आत्मा का वो क्या चाहत है वो भी परखने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे हम दीदी के लिए कहते थे, दीदी में बहुत परख शक्ति थी, वो तुरंत परख लेती थी कि इस आत्मा को क्या जरूरत है और उस अनुसार वो उनको संतुष्ट कर देती थी। और निर्णय करना, तो सही समय पर सही निर्णय करना। अब हम फैमिली लाइफ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, कितनी बातों के निर्णय रोज लेने पड़ते हैं, तो कई बार ज्ञान के अनुसार और दुनिया के अनुसार कन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन है ना। बच्चों की शादी करनी है या जो भी अपने धन के बारे में कोई निर्णय लेना है या संपत्ति के बारे में जो भी, तो हम थोड़ा सा मूंझते हैं। बाबा की श्रीमत क्या है हमें सामने लाना पड़ेगा ना, बाबा की श्रीमत क्या है। तो हमेशा ये देखना है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है क्योंकि बाबा गृहस्थी भी थे, बाबा बिजनेसमैन भी थे ना। बाबा की जो जीवन थी वो पूरी सांसारिक जीवन थी, फिर बाबा पूरी तरह से बाबा के बने। तो बाबा ने कैसे यूज किया अपने धन संपत्ति को, अपने बच्चों के साथ बाबा ने किस तरह से निर्णय लिए, तो बाबा को अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं तो निमित्त आत्माएं हैं, उनसे हम थोड़ा गाइडेंस लें, लेकिन सही निर्णय हमें संगम युग पर हम लेंगे तो हमारा धन, जिसे हम, जिसे बाबा कहता है कि अभी हमने जो लगाया वो कितना गुना होकर मिलने वाला है, पदम गुना पदम पदमा पदम पति, वो हमें माना एक मुट्ठी चावल हमें महल दिलाने वाला है, तो इतना वो हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो वो भी उतना ही वैसे हर चीज सफल होनी चाहिए। और फिर सामना करने की शक्ति भी हमारी समय पर काम करे। अब अनहोनी होती रहती है लाइफ में, हमारे जैसी इच्छा के अनुसार ही थोड़ी जीवन चलता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक जैसे कोविड आ गया, कोई पूछ कर थोड़ी आया कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, या कभी भी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई लॉस हो जाता है, चोरी वोरी हो जाती है, कहीं ऐसे कई चीजें, कई घटनाएं दुनिया में घटती रहती हैं। तो फिर अगर हम हर स्थिति में ज्ञान को यूज करके अचल अटल अडोल रहते हैं, अगर हमारी स्थिति हिलती नहीं है, ये ऐसी कुछ अनहोनी घटनाएं होने पर भी, तो हम कहेंगे हम पास विद ऑनर हुए। और अगर हिल जाते हैं तो फिर हमने गंवाया। अगर हिल गए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, तो फेल। मानो किसी ने शरीर छोड़ दिया। अब जैसे बॉम्बे की ही वो माता जी थी ना, जो सिद्धार्थ शुक्ला, क्या नाम था उनका, हाँ सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी थी ना, वो पार्ला कनेक्शन में ही आते हैं। तो देखो कैसे वो, अब जवान बेटा किसी का चला जाए है, और वो बिल्कुल स्टेबल रहे तो ये बड़ी बात है ना, और उसकी उस स्थिति ने सेवा की ना। मीडिया में वायरल हो गया ये कि भाई ये माता जी को रोना नहीं आया और ये बिल्कुल शांत है और सब कुछ कर रही है लेकिन बिल्कुल सब शांति से, तो वो पास हुई। बाबा इसीलिए कहता है रोना नहीं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो हलवा खाने का मतलब क्या, अपने यहाँ तो भोग में बनता भी हलवा ही है, कोई शरीर छोड़ता है तो उसके भोग में हलवा ही बनता है, लेकिन मतलब क्या है कि हमें पता है ना, नॉलेज दे दी तीनों कालों की बाबा ने, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो आगे जाएगी अपना पार्ट बजाने, है ना। तो फिर रोने से हम क्यों उसको दुखी करें, इससे तो हम उनके प्रति और ही शुभ भावना रखें, उनको दुआएं दें, वो आत्मा जहां भी जाए। जैसे अभी हम थोड़ी रोते हैं, कोई शरीर छोड़ता है ब्राह्मण परिवार में कोई रोता है ना, नहीं रोते हैं क्योंकि नॉलेज है। तो वो शक्ति हमारे अंदर रहे, समय पर वो शक्ति काम करे। अगर मोह होगा तो रोना आएगा, लेकिन नष्ट मोह है तो फिर आसानी से ऐसी स्थिति का सामना कर लेंगे। और सहयोग देना, तो सेवाओं में हम सब जब भी बाबा की सेवाएं हम करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे वो कर्मणा सेवा करते हैं, चाहे हम वाचा सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, हम बाबा के कार्य में सब सहयोगी हैं, और सेवा हमारे भाग्य को बनाने वाली है। सेवा से भी हम जमा करते हैं, दुआओं का खाता विशेष रूप से हम सेवा से जमा करते हैं, लेकिन सेवा की भी विधि है। अगर उस विधि से सेवा हो रही है तो जमा हो रहा है, 100% जमा हो रहा है, और अगर उस विधि पूर्वक सेवा नहीं है, फिर भले हम 24 घंटे सेवा कर रहे हैं तो देखने में तो लग रहा है हम बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन जमा कितना हो रहा है। तो बाबा ने बताया है बहुत बार, निमित भाव से, निर्माण भाव से, निर्विघ्न सेवा, वो हमारा जमा करती है। लेकिन अगर मैंपन आ गया सेवा में, मेरापन आ गया, नाम मान शान का विघ्न आ गया, तो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन जमा हो रही है नहीं हो रही। तो कहां भी अगर मैंपन आया, मैंपन माना मेरे को समझते नहीं है ना, मेरे अंदर इतनी विशेषता है फिर भी मेरे को चांस नहीं मिलता है, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आता है ना, मेरे को तो पीछे ही रखते हैं, मानो ऐसे ऐसे संकल्प, ये मैपन है ना सारा। अगर हमें इस तरह के संकल्प चलते हैं तो फिर वो सेवा निर्विघ्न सेवा नहीं है। और अगर सेवा में हमारे भाव स्वभाव का भी टकराव होता है, क्योंकि सेवा में संगठन होता है, बिना संगठन की सेवा होती नहीं, तो अगर भाव स्वभाव का टकराव होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं या दूसरों को करते हैं। अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने ये बात कही थी, साकार मुरली में, तो सेवा में वो विघ्न रूप बन जाता है ना, तो फिर ऐसी सेवा जमा नहीं करती है। हम ना खुद संतुष्ट रहे और ना ही हमने दूसरे को संतुष्ट किया। सेवा कैसे होनी चाहिए, सुख देना है सुख लेना है, हमारी सेवा से हमें सुख देना है, सुख देने के लिए तो हम सेवा करते हैं ना, तो फिर ना दुख देना है और ना दुख लेना है, तो वो सेवा का खाता हमारा बढ़ता जाता है, जमा होता जाता है। और अगर डिससर्विस कर दी, एक तो हो रहा है जमा है, पर बहुत माइनस कब होता है, जब हमारे से बाबा का नाम बदनाम होता है, हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया, खासकर विकार की ही बात होती है, तो फिर अगर बाबा का नाम बदनाम हुआ तो सद्गुरु का निंदक ठहर ना पाए। उसको बाबा कहता है 21 जन्मों के लिए जो आपकी ऊंची कमाई की बिल्डिंग है वो धड़धड़ाकर नीचे, पूरी कमाई खत्म। साकार मुरली में बाबा कहता है कि कमाई चट हो जाती है, आज तक आपने कितनी भी सेवा की, कितना योग किया, जो जमा किया, सब फिनिश। अगर आप एक बार भी वो विकार के उसमें चले गए, और वो बाबा का नाम तो बदनाम होता ही है, क्रोध में भी बाबा का नाम बदनाम होता है क्योंकि क्रोध भी प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि काम विकार के लिए कड़े शब्दों में बाबा कहते हैं। बाबा कई बार साकार मूली में कहते हैं पांचवी मंजिल से गिरने के समान है ना। तो पूरा कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चोरवो वाली स्थिति। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सेवा में कोई हमारे से ऐसी डिसर्विस या कोई ऐसा कर्म ना हो। यूं तो कोई भी विकार के वश अगर हम विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड है। कमाई के बजाय क्या होने वाला है? 100 गुना दंड। बाबा कहते कमाते उतना हो तो फिर गमाते भी हो। तो हम कैसे कमाते हैं? एक होता है जो कमाई करने वाले होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, माना जमा नहीं होता। दूसरे होते हैं कमाते हैं खाते भी हैं, लेकिन इतना कमाते हैं कि फिर जमा भी, माना वो बचत भी है, बचत का खाता भी पूरा रहता है उनका। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो कमाते ही कमाते हैं, खर्च बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमारा कौन सा चार्ट है? कमाना कमा रहे हैं और यही खा के खत्म कर रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं कच्चा फल खाने वाले भी हैं, माना एक होता है कि हम पूरा जमा जो ना फल पक जाता है उसके बाद हम उसे खाते हैं तो वो उसकी टेस्ट अलग ही होती है। लेकिन सेवा में भी कई बार ऐसा होता है कि सेवा का भी कच्चा फल हम खाते हैं, क्योंकि सेवा करेंगे तो महिमा तो होगी ही होगी। जो भी हम करेंगे उसका वो कुछ ना कुछ फल तो हमारे सामने आएगा। अगर हमने उसे स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? हमने कच्चा फल खा लिया। और अगर बाबा को अर्पण कर दिया, क्योंकि कराने वाला कौन है, देने वाला कौन है, है ना, तो ये सब बाबा का ही है। तो अगर बाबा को ही समर्पित कर दिया तो फिर हमारा जमा हो जाता है। तो कैसे हम ऐसे करते हैं, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, माना आपने अमृत वेला किया, मुरली किया, तो जमा किया, लेकिन सारे दिन कार्य व्यवहार में भूल गए, भूल जाते हैं, ज्ञान याद थोड़ी रहता है। तो फिर देह अभिमान में आ गए बीच बीच में। देह अभिमान में आने के कारण मैंपन में भी आए, गुस्सा भी कर लिया ना, उल्टा पुल्टा भी जिसको बोलना था बोल दिया। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? गंवा रहे हैं। तो सुबह तो हमने कमा लिया, फिर सारे दिन में गंवाते भी जा रहे हैं। तो हमारा जो जमा का खाता उसी अनुसार होगा। अगर ज्यादा ही गंवा दिया तो बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा चार्ट रखने के लिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि अगर हम रोज अपना, जैसे बिजनेसमैन जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं ना, रोज की अपनी कमाई, कितनी हमारी कमाई, कितना प्रॉफिट में हम जा रहे हैं, वो पूरा हिसाब रखते हैं। तो हमें भी, ये तो पूरे कल्प की कमाई है, वो तो चलो एक दिन की एक जन्म की कमाई की बात है, लेकिन यहाँ तो हम पूरे कल्प के लिए कमा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे जितना हम सफल कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध वैसी ही सतयुग में त्रेता युग में मिलती है। अगर हमने तन को सेवा में लगाया, कर्मणा सेवा हम करते हैं ना, तो उतना ही हमारा स्वस्थ और सुंदर तन वहां पर है सतयुग में। अगर हम मन को सेवा में लगा रहे हैं, मनसा सेवा भी करते हैं, रोज करते हैं सभी मनसा सेवा। अभी बाबा ने संडे की मुरली में मनसा सेवा का होमवर्क दिया कि कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम मनसा सेवा ना करें। तो मनसा सेवा अगर हम करते हैं तो सतयुग त्रेता पूरा मन सदा सुख शांति में संपन्न रहेगा। और जो चित्र भी बनेंगे द्वापर युग में वो भी उतना ही सुख शांति देने वाले होंगे। चित्रों के दर्शन से भी तो शांति मिलती है ना? मंदिरों में क्यों जाते हैं दर्शन करने? क्यों जाते हैं? वो तो उनको दर्शन से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो बाबा कहते हैं चित्र भी फिर ऐसा ही बनेगा। और धन, धन जो भी हम सफल करते हैं तो अकिचार धन के मालिक बनेंगे, यानी गरीब तो कोई भी नहीं होगा, प्रजा की प्रजा भी धनवान होगी, लेकिन कितना धन हमने अभी सफल किया बाबा की सेवा में उतना धन के मालिक वहां बनने वाले हैं। फिर संबंधों में जैसे, तो तो बाबा कहते हैं जितना आपने समय सफल किया आप वन वन मतलब ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट जो फर्स्ट जन्म है, वन 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 से शुरू होता है ना, तो वो फर्स्ट जन्म में आप बाबा के साथ संबंध में आएंगे, कोई ना कोई संबंध में, चाहे तो फ्रेंड होंगे, चाहे तो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे उनके साथ में, तो रास करने वाले, तो पूरा समय अगर हमने सफल किया है बाबा की सेवा में, बाबा की याद में समय नहीं गवाया है, तो संसार के नंबर वन समय में आने के अधिकारी हम आत्माएं बनेंगे। तो ये जमा के खाते का महत्व है। तो हमें अपना चार्ट रखना है कि हम रोज कितना जमा करते जा रहे हैं। ओम शांति।
शांति। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जमा की विधि बताई कि कैसे हमें अपने संकल्पों को, समय को कंट्रोलिंग करके उसको यूज करना है। सेवा करनी है तो निमित भाव से करना है। दादियों का एग्जाम्पल देकर के आपने हमें बताया कि कैसे मनन चिंतन करना है और रिवीजन करना है, मुरली के ऊपर अटेंशन देना है। तो हम सभी यही आपकी विधि को जरूर अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति।